until they get the crowns. Sangam Yugi crown. We have three crowns. One is temporary crown, which is for the translation. Right? Second is the crown of light. The more the yoga power is, the crown. And third is crown of might, of self, through self-sovereignty, becoming worthy to rule the kingdom. So, and confluence is the zimmevari ka crown. Now, crown mil jave na. Abhi tak jab tak crown mile. Achha, okay, alright. Yeah. Okay, Hindi. So I was waiting. Mere ko ye tha, jab tak inko taj mil jave. Samjha na? Ye sangam yug mein bhi double taj hai. Aur sat yug mein bhi double taj hai. Parantu wo sangam yug ka taj ek milta hai telephone conference. Ek hai conference jiska ye telephone जैसे सुनते या यहाँ से सुनते ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए भी ये ताज है ना, और दूसरा जिम्मेवारी का ताज मिलता है, वो तो सबको मिलता है। अच्छा, तो आज बाबा ने पुनर्जन्म का बाबा ने का बहुत हिसाब किताब है। सॉन्ग था मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो हम सब आत्माएं मरना और जीना, और जीने के बाद मरना, तो एक ये अलौकिक मरना है, उसमें हम जीते हैं पहले, जन्म पहले ले लेते हैं, मरते पीछे। ये जो ब्राह्मण जीवन है ना, ये वंडरफुल अलौकिक जीवन है। जन्म लेते हैं पहले उसी शरीर में, और उसी शरीर से फिर मरते हैं पीछे। आई समझ में ये बात? मरने का मतलब होता है कि देह तथा देह के संबंध को, संपत्ति को सब भूलना, देह तथा देह का संबंध खत्म हो जाता है। और जन्मने का अर्थ होता है क्या? जन्मने का अर्थ जन्म लिया तो मतलब नवे मां बाप, नवा संबंध जुटा। तो हमको जीते जी पुराने मां बाप हमारे हैं, लौकिक हैं, परंतु हम उनसे अभी मरे नहीं हैं। हमको बाबा ने अपना बना लिया, एडॉप्ट कर लिया, पुराने माँ बाप हैं। तो ये एडॉप्शन हमारी रूहानी जन्म है, माँ की गोद। तो माँ और बाप दोनों मिलते हैं हमको। तो एडॉप्टेड बच्चे हम जन्म किस हिसाब से लेते हैं कि आत्मा के अंदर ये इनहेरिटेंस का संस्कार माँ के द्वारा मिलता है, देता बाप है, पर जन्म माँ से मिलता है। अगर ब्रह्मा माँ को नहीं पहचाना, ब्राह्मण नहीं बने, तो स्वर्ग के अधिकारी नहीं बनते, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्मा ही नहीं हूं तो बर्थ ही नहीं लिया तो बर्थ राइट अधिकार कहां से मिलेगा? इसलिए जितना बाप की महिमा है, निराकार की पिता कहते हैं, परंतु महिमा करते हैं तो तुम मात पिता हम बालक तेरे, पहले माता कहते हैं। तो जब तक हमने ब्रह्मा माँ को माँ नहीं समझा, यानी जन्म ब्राह्मण जन्म नहीं हुआ, तब तक वो जो हमारा पुराना नई प्राप्ति का नशा नहीं है, खुशी नहीं है, तो पुराना छूटता नहीं है। इसलिए निश्चय चाहिए पहले कि ये मेरा ब्राह्मण जन्म है। दूसरा, मुझे नशा चाहिए कि जन्म सिद्ध अधिकार क्या मिल रहा है, और तीसरा निशाना चाहिए कि मुझे इसके बाद क्या बनना है। ये बाबा का बच्चा बनने के बाद बाबा ने जो मुझे लायक बनाया है, तो मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। तो अब जब हम जन्म लिया तो वो तो हमने खुद ही देख लिया, हमने अपने जन्म को देखा, मैंने जन्म कब लिया था। पुराना जो जन्म लेते हैं ना, तो माँ बाप बताते हैं इस डेट में तुम जन्म लिया था, इस हॉस्पिटल में तुमने जन्म लिया था, तो माँ बाप की बताई हुई बात बताते हैं। और यहाँ जब हम जन्म लेते हैं तो हम बताते हैं, पहला लेक्चर में आए थे, ये तीर लग गया था, इसने मुझे समझाया था, बाबा मुझे मिला था। तो वो जो बाबा से मिला हुआ हम अपना जन्म अपने आप देखते हैं। फिर मरने में हम जब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमारे को जब तक जिंदा है, पुराने से मरे नहीं है ना, तब तक तो अनेक बातें होती है। जिंदा होते हैं पुराने से तो हमारे संस्कार टकरा रहे होते हैं, पुराने को छोड़ा नहीं है, कर्म का हिसाब किताब खींचता है, तो हमारे कर्म का, तन का भी हिसाब किताब, मन का भी हिसाब किताब, संबंध का भी हिसाब किताब, तो वो कर्मों का हिसाब किताब का बहुत प्रकार की एक्सपेक्टेशंस भी होती है। और हमको जो पुरुषार्थ करके अपना कर्जा चुकता करना, उसकी मेहनत भी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको नशा तो चढ़ता है, सुधर अपना दर्शन 84 जन्मों में, इस जन्म भी तो पहला जन्म है ना, एक जन्म सुदर्शन चक्कर को माया बार बार भुलवा देती है। तो सुदर्शन चक्कर कोई सतयुग की बात नहीं है, चक्कर तो यहाँ से शुरू होता है ना। इस जन्म का नशा माया बार बार भुलवा देती है, तो इस जन्म का नशा भूला तो आगे का नशा नहीं चढ़ेगा ना। अच्छा, पर इस जन्म का जब पुरुषार्थ करते हैं तो ये एक लॉ है, जब तक आप जिंदा हैं आपको लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो भी क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं अच्छा करेंगे तब तो क्रिटिसाइज करेंगे ही सही। और जब मर गए तो फिर वो उसकी जन्म दे, जब होता है ना गैदरिंग होती है, कोई भी उसकी बुराई नहीं करता, बहुत अच्छी थी ये, मेरे को ये अच्छा दिया, भाई बहुत अच्छा था, कितनी सारी बातें, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कॉन्टेक्ट हो, वो मरने के समय कोई किसी की उल्टी बात बोलते है, सब अच्छी अच्छी बातें बोलते है। तो सब मर गए ना, हम जीते जी मर गए, हम्बल हो गए, हम मर मिटेंगे तेरी गली में, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो मरना मना दे अभिमान छोड़ना, और मिटना मना मिट्टी में मिल जाना, इनकोग्निटो बन जाना। वो जब इनकोग्निटो बनते हैं फिर वो पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर वो जो है ना पेड़ खिलता है, यानी प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते हैं, तो तब महिमा करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, इन्होंने बहुत अच्छे आगे बढ़े हैं। पर जब तक मेरेपन में, मेरा पुरुषार्थ, मेरी पोजीशन, मेरा हाउस, मेरी एक आइडिया, मेरी सर्विस, वो जो कर भी रहे हैं ना, वो मेरापन जब तक नहीं जाता है तब तक कोई महिमा नहीं करता। हाँ, थोड़े समय की महिमा मिलती है, पहले मरने की बात सुनाती फिर थोड़े समय की पूजा की बात पीछे बताती हूँ। अच्छा, अब एक तो हुआ परमात्मा के साथ हमारा रूहानी जन्म, तो अलौकिक जन्म है, जीते जी हम अपना जन्म पहले देखते हैं, और फिर हम अपने पुरुषार्थ से हमारी कितनी इच्छा मरने की है उस हिसाब से मरते हैं। तो ये हम अपने जो संस्कार अनुसार जन्म होता है ना, सतयुग में लंबी आयु किन की होती है, भाई जिन्होंने ये सीख लिया अपनी इच्छा से मरो, समझा नहीं था, आ रही समझ में बात, कि हमारी अपनी इच्छा है, मैं दे नहीं हूँ, दे से न्यारी हूँ, दे के संबंध पाठ बजाने वाले हैं, तो मैंने अपनी विल पावर से मैं मरी ना। तो बाबा कहते हैं संस्कार अनुसार तुम जन्म लेते हो, तो मैंने ये संस्कार पक्का ब्राह्मण जन्म का भर लिया, अपनी विल पावर से मैं देह से भी न्यारी होती हूँ, अभिमान को भी छोड़ती हूँ, अपमान कोई करता है तो कोई स्वमान में ही रहती हूँ, कोई उल्टी सुलटी बातें मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग से उल्टा बोलते थे, मैं समझती हूँ बेचारे की मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को मैंने अंडरस्टैंड किया, मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं मत्था क्यों मारूं, राइट अंडरस्टैंडिंग राइट टाइम पर हो जाएगी। वो एकदम साखी होके रहते हैं ना, संबंध नया कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनाते। तो मां सतयुग में मैं अपनी इच्छा से शरीर छोड़ूंगी, लॉन्ग लाइफ रहेगी। यहां मरने में विल पावर चाहिए, इच्छा चाहिए, तो वो संस्कार हम लेके गए ना, आ रही है बात समझ में। अभी का संस्कार जीते जी मरने वालों का, अपनी इच्छा से जितना जल्दी मरेंगे उतना वहां देर से शरीर छोड़ेंगे। समझा? यहाँ झट मरेंगे ना, शिव पर समर्पण हो जाएंगे, तो उसका भगवान के साथ हिसाब किताब इतना बनता है, जो हम 150 साल 160 साल, वो तो एवरेज आयु 125 है ना, जैसे आज 45 6 50 इयर्स एवरेज आयु है, वहाँ एवरेज आयु 125 है। तो जब जब तक मैंने एंजॉय करना है मैं करूंगी, कोई कर्म का हिसाब किताब तो है नहीं, संत तो रोगी होता नहीं, शरीर तो बुढ़ा होता नहीं। अपनी दिस अपने शरीर से अभी तो क्या होता है, कपड़ा सुंदर डाला है ना, कपड़ा अच्छा है तो बस नमा है तो अच्छा लगता है, धीरे धीरे वो मैला होता जाता है, धुलाई होता जाता है, फिर तो उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं, बुढ़ा कपड़ा हो गया, छोड़ दू ना, पुराना हो गया, वहां बुढ़ा होता ही नहीं है, वो तो सदा चमकता रहता शरीर, फिर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते। तो ये भी कर्म का पुनर्जन्म का एक हिसाब किताब संगम युग का। दूसरा फिर हम परम धाम में आत्मा चली गई, परम धाम में हम आत्मा पहुंच गए, सभी आत्माएं परम धाम में गई। परम धाम से फिर तीन प्रकार का कारण होता है जो हम यहाँ नंबर वार आते हैं। ये जो बाबा ने कहा 84 जन्मों के राज को भी समझना है, सब लोग सुदर्शन चक्र क्यों नहीं याद कर सकते, क्योंकि ड्रामा का बहुत एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है। राजधानी स्थापन हो रही है तो सब तो कोई राजा रानी या माला के दाने नहीं बनेंगे, तो अब माला के दाने में अभी का जो पुरुषार्थ कनेक्टेड है, अभी का पुरुषार्थ फ्यूचर की प्रलब्ध, तो अब भी जो माला में पिरोए गए, बाबा के गले का हार बन गए, तो मन के अभी जो बन गए ना बाबा के गले का हार, फिर उस हिसाब से माला के मन के ऊपर से उतरते हैं नंबर वार। अच्छा, तो पहला जो कारण है, यानी हम जो सतयुग में हम जन्म लेते हैं, तो हमारी इस समय की जितना जितना हम बाबा पर बलिहार जाते हैं, जितना जितना गले का हार मीस प्यारे बनते हैं, जितना जितना हमारे हृदय में बाबा समाया है और बाबा के हृदय में हम समाये हुए हैं, तो हमको परमात्म शक्ति और ब्रह्मा द्वारा जो पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा ने राज लिया, हम राज फिर अधिकारी ब्रह्मा द्वारा हमको मिलता है। ब्रह्मा और सरस्वती लक्ष्मी नारायण हैं, तो सेकंड लक्ष्मी नारायण को जो उसके पीछे वाला मणका होगा वही गद्दी पर आएगा ना, यानी उनको फॉलो करने वाला, यह मणके का मतलब फॉलो करने वाला, क्योंकि मणका मणके को फॉलो कर रहा है ना, दूर नहीं है ना, नजदीक है, उसके पीछे है, एकदम फॉलो करने वाला है, बीच में कोई नहीं है, मणके के बीच में दूसरा कोई मणका नहीं है, तो वो सेकंड नंबर। तो अभी जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, श्रेष्ठ कर्म किया, समर्पण किया, नष्ट मुआ रहा, उस लेवल के पुरुषार्थ वाले, तो जो भी सतयुग के राजा रानी होंगे उस लेवल के पुरुषार्थ करने वाले अपने समय पर आएंगे, पर उनको क्या खींच के लाएगा? तो एक तो अपना पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ के आधार से प्रारब्ध मिलनी है, पर दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो पुरुषार्थ में कहाँ जाके जन्म लेंगे। तो जिन आत्माओं ने वो जन्म कोई कर्म का हिसाब किताब कोई शरीर का बंधन तो है नहीं, परंतु उन आत्माओं को राजाई की प्रारब्ध मिलनी है, पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलनी है। जन्म का कोई वो नहीं है, शरीर से न्यारे हुए शरीर की खींच नहीं है। और माँ बाप को भी कोई रचना रचनी है, बच्चे पैदा करने हैं, ये विकार का संस्कार ही नहीं है, वहां की प्रकृति अलग है। तो वहां जो उनको अभी हमको प्रिंस चाहिए, अभी हमको राजगद्दी लेने वाला चाहिए, तो वो अपनी संकल्प से राज ऑन जो गद्दी है वो पास ऑन करनी है, ट्रांसफर करनी है, तो प्रिंस चाहिए ना। तो वो जो आह्वान करते हैं राजगद्दी देने के लिए, तो उन आत्माओं का फिर आत्माओं से संबंध वो नीचे लेके आता है। आत्मा जैसे कि वो आत्मा उस नंबर में आएंगी। तीसरा होता है प्रकृति से संबंध, यानी हमारी जितनी हमारी प्रकृति, अब भी हम इन पांच तत्वों से न्यारे होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना हम डिटैच होते जाते हैं और इन अंगों को शुद्धि से यूज करते हैं। ये थोड़ी बहुत गहरी बात है, शब्द बड़े साधारण हैं, जो संडे को मैं बताना चाह रही थी बार बार। शब्द ऑर्डिनरी हैं, आंखें काम तो देखने का करती हैं ना, पर मेरी वृत्ति और दृष्टि, जितनी मेरी वृत्ति मेरी ऊंची है, भावना मेरी ऊंची है, और दृष्टि मेरी उसी तरह रहती है, या दृष्टि में दो दिखाई पड़ते हैं, भावना अच्छी है परंतु उनका भाव को मैं नहीं समझ रही हूँ, या मेरा भाव उनकी चाल को देखते बदल गया। मेरे को ज्ञान है, मुझे आत्मा देखना है, पर वो देह अभिमान में है तो मुझे भूल गया कि मुझे उनको आत्मा देखना है। मुझे तो आत्मा याद थी, पर उनका जो चाल देखी तो मुझे तो भूल गया कि मैं आत्मा हूँ। उन्होंने अब उनका मेरी दृष्टि में इतनी ताकत नहीं थी जो मैं वो दो चीज ना देखूं। मेरी दृष्टि में दोष भी दिखाई दे रहा है और मेरी दृष्टि में भावना भी अच्छी दिखाई दे रही है, तो मैंने दृष्टि को इतना शुद्ध रखा। वहां देव दृष्टि में हमेशा दृष्टि शुद्ध होगी ना, नयन एकदम पवित्र होंगे, कमल फूल समान कमल नेत्र, तो मेरे नेत्र अभी तक कमल तो नहीं बने हैं ना, कीचड़ फौरन लग जाता है ना। कमल नयन कमल चरण कमल, मेरा हर कदम जो है वो बाबा के साथ रहे, मिट्टी पर न रहे, मिट्टी वाला न होवे, झूले में झूलूं, हर पुरुषार्थ ऐसा चले वो तो नहीं चलता है ना। तो जिन्होंने इतनी गहराई से अपने कर्म इंद्रियों को शुद्ध करके प्रकृति को पवित्र बनाया है, पीछे के नेचर की सेवा, एलिमेंट्स की सेवा, वो आजकल क्या है एनवायरमेंट फ्रेंडली। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट तो पांच तत्वों के से बनता है ना। हम उनको बाहर वाले तत्वों को शुद्ध कर रहे हैं, पर जो मेरे को गिफ्ट मिली हुई है तत्व मेरे साथ हैं। ये मेरे तत्व पांच तत्व है ना, पांच तत्व की बनी हुई बॉडी है ना। तो हम उसको, जैसे हमको आदत पड़ी है कि हम बहुत जल्दी इकट्ठा करने में हमको बहुत टाइम लगता है, लॉ नेचर के हिसाब से खेती उगाओ ना, खेती उगाओ 6 महीना लग जाएगा तब तक वो उगे, फिर उसको काटो साफ करो, फिर समझो मानो जो है कितना समय आपको लगा जब तक मार्केट में आवे बाहर उसको काटने का समय आवे, फिर आप समझो उसको ऐसे अनाज तो मुंह में नहीं डालोगे ना, साफ करेंगे पिसवाएंगे, पिसा हुआ आटा तो नहीं खाएंगे ना, पकाएंगे, समझा। अभी वो समझो हमने जो तैयार किया वो कितने टाइम में लगा, कितना महीने लगे समझो, और हमने कोई चीज है मुझे अच्छी नहीं लगी फेंक दी, एक मिनट लगा। हम लोग अभी ये जो है कई चीजें, बाबा के घर में भी पहले ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व होता था, इतना ही लेते थे, एक चावल भी नहीं जाते थे। मम्मा कहती थी एक चावल गया माना एक हीरा तुम्हारा चला गया। अभी तो हम कोई बात नहीं फेंक देते हैं ना, फेंका कितने में, कमाया कितने, बनने में कितना टाइम लगा। तो ये सूक्ष्म फिलॉसफी को हम नहीं समझते। हमारे पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ कहते हैं इतना तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ खुशी नहीं हो रही है, इतना तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ खुशी नहीं हो रही है, गंवाते जल्दी हैं, कमाते बहुत में टाइम लगता है और वेस्ट जल्दी कर देते हैं। तो एक कर्मों की फिलॉसफी में हमारी कर्म इंद्रियां, हाँ मैं बता रही थी कि जो हमारी शरीर की कर्म इंद्रियां तत्वों का पुत्र है ना, शरीर तो प्रकृति का पुत्र है। बेशक माँ बाप ने हमको जन्म दिया, हम कहते हैं ये हमारे माँ बाप हैं, परंतु बनी हुई जो स्ट्रक्चर है एग्जिस्टेंस बॉडी की तो पांच तत्व हैं। तो ये जो पांच तत्व हैं, जितना जितना मैं इस पोजेसिवनेस से, वेस्ट से न्यारी हूँ, रेस्पेक्टफुल हूँ, उतना फिर प्रकृति मेरी दासी होती है। आज बाबा ने स्लोगन में क्या बोला, जितना आत्मा में परमात्म शक्तियां हैं उनकी प्रकृति दासी होती है। तो परमात्म शक्तियां का मतलब है कि मुझे मेरी इन कर्म इंद्रियों पर पहले तो शक्ति मेरी होगी, इन सेल्फ सॉवरेनिटी होगी ना। और थोड़ी गहरी बात है, जितनी जितनी मेरी सेल्फ सॉवरेनिटी मेरी कर्म इंद्रियों पर जीता है, क्योंकि उसी कर्म इंद्रियों से पर प्रकृति का संबंध है। खाता क्या हूँ, कैसे खाता हूँ, पीता क्या हूँ, किसी सब किस कॉन्शियस में पीता हूँ, खान पान व्यवहार सब संबंध हो जाते हैं ना। तो सतयुग में हम आत्माओं के प्रकृति सतो प्रधान है, जब सतयुग में तो हमारी बॉडी उस वक्त हम जन्म लेंगे ना, प्रकृति का संबंध हमको खींचेगा, प्रकृति का सुख भी तो लेना है, ना केवल माँ बाप से अधिकार लेना है। चौथा फिर है हमारे कर्मों का हिसाब किताब मनुष्य आत्माओं के साथ। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, हमने हिसाब किताब किन से ज्यादा बनाया है, अगर हमने द्वापर वाले संस्कारों वाली आत्माओं से हिसाब किताब बनाया है, तो जरूर वो हमको उस समय हमारा उतरना होगा ना। प्रकृति भी तमो प्रधान सब रजो प्रधान हो जाएगी, मनुष्य भी जो पीछे उतरने वाले हैं, द्वापर में उतरने वाले हैं, वो हमको उस समय खींचेंगे, हम उनके साथ आके हिसाब किताब जोड़ेंगे। तो हमारा अपना पुरुषार्थ अभी का प्रलब्ध जो बाबा से मिलती है, फिर हमारा हमारा हिसाब किताब और हमारा व्यवहार, यानी जो सतयुग में भी जाने वाली आत्माएं हैं, हमारा उनके संस्कारों से कितना मिलन होता है, हमारा संस्कार मिलन। तो हमारे अंदर वो दिव्यता के संस्कार उतने जितने जितने बढ़ते जाएंगे, उतना देवतापन के फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड उसमें आएंगे, राजा बनेंगे, प्रजा बनेंगे। उसमें भी सब देवताएं, फिर बाबा ने कहा देवताएं तो सब बनेंगे, स्वर्ग में तो सभी आएंगे, परंतु सबकी पूजा एक जैसी नहीं होती। तो आज बाबा ने ठाकुर जी की मिसाल बताई कि शिव जी के साथ ठाकुर की पूजा होती है, तो शिव जी के साथ ठाकुरों की पूजा होती है। अच्छा, अब उसमें से वो कौन से ठाकुर हैं जिनकी एक दिन की पूजा हो के मिट्टी का बनाया, एक दिन पूजा हुई खत्म हो गया, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरे, और वो कौन से हैं जिनका मंदिर बनता है 2000 साल तक, 2500 साल तक वो पुराना मंदिर पूजा जाता है, वही मूर्ति पूजी जाती है, जगह जगह वो मूर्ति पूजी जाती है। तो नेचुरली बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की प्रलब्ध सेवा का फल तो मैं दूंगा। तो जो आत्माएं टेम्पररी थोड़ा अपने संस्कारों से नहीं करती परंतु फिर भी बाबा में से सेवा, बाबा ने कहा ना सब थोड़े ही सेवा करते होंगे, सब थोड़े ही सहयोगी होंगे। ये क्या राज है जो हर बारी बनता है टूट जाता है। तो जो थोड़े समय पर देखा देखी या थोड़े नाम शान से मन के लिए थोड़ा करते हैं, थोड़ा मान मिल जाता है। मान शान से किया तो मान उस वक्त सबसे के साथ मान मिल गया। परमानेंट अपनी भाव सदा शिव सदा का पुरुषार्थ चले, सदा की पूजा है। थोड़े समय की महिमा की तो थोड़े समय की पूजा है। तैसे बाबा ने कहा एक मंदिर की मूर्ति साल में एक बारी खुलती है, उसकी पूजा सारे शहर में वो चक्कर लगा के आ जाते हैं, एक दिन की पूजा होती है पर सारे शहर में सारे भगत उनको नमस्कार कर लेते हैं, उनके पास आके नहीं करते, उनको ले जाया जाता है इनको मान दे दो। कईयों को ऐसा मान चाहिए, उनके पास नहीं आएंगे वो मांगेंगे मान तो ले जाएंगे उनके पास, भाई प्लीज इनको मूर्ति को नमस्कार कर दो, सारे भगत उनको नमस्कार करेंगे। तो बहुत सूक्ष्म बात है पूजनीय मूर्त बनने के लिए एकदम न्यारा रहना है। तो जब हमारी ऐसी स्टेज हो जाती है कि मान शान की हमको इच्छा नहीं है और मान मिले तो स्वीकार नहीं करें, फिलॉसफी है मान मिले महिमा मिले स्वीकार कर ली तो पक्का ही समझ लो 10 बारी अपमान जरूर होएगा, क्योंकि समान रहना है तो अपमान वाले तो बहुत होंगे, मान देने वाले थोड़े होंगे, और जो मान देंगे वो सच्चा मान देंगे, अपमान वाले अभिमान से अपमान देंगे तो अपमान अभिमान वाले तो बहुत है, सम्मान वाले थोड़े हैं। ये सूक्ष्म फिलॉसफी है। तो स्वीकार नहीं करे बाबा महारथी बन के गणेश जी बन के शिव जी को ऊपर जो महावत को ऊपर दे देवे करण करवनार करा रहा है। तो इसलिए पहले गणेश की पूजा फिर शिव जी की पूजा। शालिग्राम जो है ऐसे ही पूजे जाते हैं, थोड़े समय के लिए पूजे जाएंगे, शिव जी की पूजा करेंगे पहले गणेश की पूजा करें। ऐसे बच्चे जो बाबा के अपने रीति से समर्पण होते हैं बाबा उनको पहले रखते हैं। इसीलिए ये भी समझने की बात है पूजनीय मुहूर्त गायन योग। तो वो शालिग्राम जल्दी मिट्टी का बनाया टूट दिया तोड़ दिया तो वो टेम्पररी अचीवमेंट है थोड़े पुरुषार्थ की, परमानेंट है परमानेंट मूर्ति है। कोई का मंदिर पूजा सवेरे से लेके 4 बारी पूजा होती है, हर कर्म की पूजा होती है, कोई का मंदिर सिर्फ 1 बारी खुलता है हफ्ते में, कोई की फिर टेम्पररी मूर्तियां बना के हॉल लेकर के उसमें मंदिर बन जाता है, वो फिर डिसमेंटल हो जाता है, आखिर तो लास्ट में यही होता है ना। तो ये भी थोड़ा थोड़ा पूजनीय मूर्त बन जाते हैं। तो सारी बात है कर्म फिलॉसफी में हमारे श्रेष्ठ कर्म निस्वार्थ कर्म कल्याणकारी कर्म और समर्पण भाव से कर्म, श्रेष्ठ कर्म निस्वार्थ कर्म प्रभु प्रेम से कर्म कल्याणकारी कर्म और समर्पण भाव से कर्म सब बाबा पर अर्पण किया तो उसका रिजल्ट बाबा फिर बहुत इंटरेस्ट बहुत देते हैं, मल्टीप्लाई करके देते हैं, तो अपना नाम छिप जाता है बच्चों का नाम आ जाता है। ये शिव और ब्रह्मा की फिलॉसफी है, ब्रह्मा और शिव, काम सारा शिव ने किया नाम सारा कृष्ण का होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने इतना शिव पर समर्पण किया करण करवनहार करा रहा है फिर बाबा उसका बैंक में इतना इंटरेस्ट जमा करता है कि शिव का नाम गुम हो जाता है ब्रह्म श्री कृष्ण का नाम आ जाता है। तो आपस में अकाउंट जैसे शिव बाबा के साथ अकाउंट बनाते हैं तो लख गुनगुना मिलता है, मनुष्यों के साथ अकाउंट बनाते हैं उतना ही मिलता है, नेगेटिव बनाते हैं नक गुना नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव बनाएंगे 21 जन्म पॉजिटिव चलेगा। इसलिए संस्कारों पर बहुत बड़ा मदार है, संस्कार अनुसार हम जन्म लेते हैं। तो ब्राह्मण संस्कार फिर भक्ति का संस्कार फिर उसमें भी टाइम पूरा होता है। इसमें भी फिर ये बहुत समझने की बात है कि हमारे संस्कार पवित्रता के संस्कार तो हैं, पर बाबा जो बार बार कह रहे हैं पवित्रता के संस्कार सिर्फ हों वो स्वर्ग में ले जावे, ऐसा नहीं है। सन्यासियों के भी पवित्रता के संस्कार हैं। संस्कार अनुसार जन्म होता है, तो सिर्फ सन्यासियों की बात नहीं है। सन्यासी तो पवित्र रहते हैं और जन्म लिया तो फिर दोबारा पवित्र बन जाते हैं, स्वर्ग में क्यों नहीं आते? उनके अंदर खुशी का संस्कार नहीं है। काग्विष्ट समान सुख है, खुशी के संस्कार नहीं है, आनंद के संस्कार नहीं है, वैराग के संस्कार है, त्याग के संस्कार है, खुशी के संस्कार नहीं है। और खुशी किसको होगी? जो संतुष्टता वाला होगा, उनके जिनके अंदर दैवी गुणों की प्राप्ति ज्यादा होगी। सन्यासियों का ऋषियों का गुस्सा तो इतना जबरदस्त है कि श्राप दिया फलाने को भस्म कर दिया, श्राप दिया फलाने को भस्म कर दिया, तो गुस्से के संस्कार वाले खुशी नहीं रह सकते। गुस्से वाला कभी खुशी का अनुभव नहीं कर सकता, दुख का ही संस्कार अनुभव करेगा। तो इसीलिए पवित्रता के साथ साथ जो बाबा ने कहा या खुशी का संस्कार रहे, सप्त चित्त में आनंद भर जावे, वो स्वर्ग में चले जाएंगे, तो उनकी पूजा परमानेंट होगी। तो संस्कारों को शुद्ध भी बनाना है और आनंद वाला भी बनाना है, खुशी वाला भी बनाना है, तो इसलिए वो स्वर्ग में जाते हैं। बाकी शुद्ध तो सब हो जाते हैं, धुलाई तो सब हो जाते हैं, कपड़े तो सारे धुलाई हो गए, पर उनकी क्वालिटी तो नहीं बदली ना। सब आत्माएं पारंधाम में तो साफ होके ही जाएगी ना, क्वालिटी तो नहीं बदली, क्वालिटी यहाँ बना के जानी है, उसको संस्कार कहा जाता है, कैरेक्टर यहाँ बना के जाना है। ओम शांति, थैंक यू।
रखें कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर इन नजारों से दूर प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मीठी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर इन नजारों से दूर प्यारा प्यारा लगे हैं अपना।